श्री चैतन्य महाप्रभु लोह युग के बद अधिक आत्माओं को भगवान के सम्मुख ان کے سمبندھ کے نیم اپنانے کے لیے ان کے پاس چل کر سوئم آتے ہیں. شری چیتنیہ کے کاریہ کلاپ مکھیتا ان کی انترنگا شکتی کے آرادنی انش کی بھومیکا کا نرمان کرتے ہوئے پرم پون ویکتی کو شری کرشن دیوے استھ پون جان پرمپون آنند کے سرو شکتیمان سوروپ ہے. ان کی انترنگا شکتی سرو پرتھم ست کے روپ میں ارتھات بھگوان کے استھ کاریہ کا وستار کرنے والے انش کے روپ میں پرکٹ ہوتی ہے. یہی شکتی پون جان پردرشت کرنے پر چت یا سمت کہلاتی ہے جو بھگوان کے دیوی روپوں کا وستار کرتی ہے. انت میں وہی شکتی آنند پردان کرنے کے لیے احادنی کہلاتی ہے. اس پرکار بھگوان اپنی انترنگا شکتی کو تین دیوی بھاگوں میں پردرشت کرتے ہیں. ओम ज्ञानस्त्रिभिर्मथस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकृतार्थं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणमल्लिका श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तुते तत्र काञ्चन गौराङ्गी राधे कृष्णेश्वरी विश्वानुसृते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च अधिकानां पापमेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्रीकृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत जगदाध श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे. हरे कृष्णा. आप सब भक्तों का आज के इस महान दिन में हार्दिक स्वागत है. आज राधाष्टमी महामहोत्सव है. राधाष्टमी महामहोत्सव की आज के दिन श्रीमती राधा रानी का प्रकटीकरण हुआ. हम सब साधकों के लिए राधा रानी का प्रकटीकरण दिवस बहुत महत्वपूर्ण है. श्रीमती राधा रानी को बोला गया करुणामयी सर्व करुणामयी. इनसे ज्यादा और कोई करुणा प्रदान नहीं कर सकता. और आपसे कितने भक्तों को राधा रानी करुणा चाहिए ऐसा ही कम लग गया. आज का दिन भी मांगने का है. कंजूसी मत करो भी मांगने का. अगर भिखारी कंजूसी करेगा भी कैसे मिले. अगर भिखारी भी मांगने में सुस्ती करेगा और सारे भी कैसे मिले. राधा रानी का प्राकट्य आज इसलिए हुआ कि संसार में जो जीव फंसे हुए गुरु मृत्यु के चक्कर में कृष्ण के प्रेम से बिल्कुल विमुख राधा रानी प्रकट हुई है. कृष्ण प्रेम वृद्धि के लिए कृष्ण प्रेम प्रदायक है. इतना बड़ा प्रोडक्ट इतना बड़े महत्वपूर्ण चीज कृष्ण प्रेम इतनी आसानी से राधा रानी के पास अवेलेबल है. हमारे लिए बिल्कुल उपलब्ध है. तुरंत नाम बुलाएंगे तुरंत राधा रानी कृष्ण प्रकट हो जाएंगे और अपनी कृपा देंगे. हम लोग अभी इतने उत्सुक नहीं है कृपा पाने के लिए. कृष्ण प्रेम में इतनी भी हमारी रुचि नहीं है. संसार में बहुत जगह सभी प्रेम मिल रहा है रस मिल रहा है. हम उसे बड़े संतुष्ट हैं. कभी कभी थोड़ी दिक्कत होती है तो भगवान की शरण में जाना पड़ता है. लेकिन फिर हम पार्ट टाइम एंगेजमेंट रखना चाहते हैं. हमारे पास अभी बहुत से काम हैं. लेकिन राधा कृष्ण बहुत ज्यादा उत्सुक है हमें प्रेम देने के लिए. वो तो मौका ढूंढ रहे हैं बहाने ढूंढ रहे हैं. तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है कि आज के दिन हमें राधा रानी की कृपा मिलेगी प्रचुर मात्रा में. ये आध्यात्मिक जगत जगत का लक्षण है। भौतिक जगत में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाता है वो उतना मुश्किल होता है उसको अप्रोच करना। हमारे साथ बचपन में एक गोली डंडा खेलता था, क्रिकेट खेलते थे, जाके एमएलए बन जाए, फिर एम पी बन जाए, अगर साथ में होता था हमारे उसको मारते थे, गाली देते थे, हम उसको अप्रोच करने में पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, यहाँ बड़ी मुश्किल से हो जाता है, होता क्या होता है, उसकी कृपा पाने की लाइन में खड़ा होना पड़ता है। लेकिन राधा कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी है, उनकी कृपा तुरंत है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। तो इसलिए आज का दिन बहुत मान देने हमारे लिए, हम याचना करते रहे। आज हम चर्चा करेंगे अब राधा रानी पे चर्चा करने के लिए बहुत योग्यता चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं राधा और कृष्ण पजल है, जितने भी बौद्धिक बड़ी लोग हैं उनकी बहुत बड़ी पजल है, कौन है राधा, कौन है कृष्ण, राधा कृष्ण क्या है, इन्होंने विवाह क्यों नहीं किया, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, क्यों आए, कहां से आए, कुछ पता नहीं। राधारानी है भी नहीं भी, कई शास्त्रों में वर्णन है, कई में नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, गुत्थी है, पजल है। और ऐसे महान तत्व पर चर्चा करना मेरे जैसे जीव में लगभग असंभव है। भगवत कहें वही कर सकता है जो आध्यात्मिक दृष्टि में बहुत उन्नत है, तो समझना लगभग असंभव है। लेकिन फिर भी जितनी सीनियर बुद्धि है, जो बड़े महान वैष्णव आचार्यों से, अपने सीनियर वैष्णव से मैं सुने, उसको कुछ दोहराने का प्रयास करूंगा। और ये इस उद्देश्य के साथ आप सब वैष्णव की कृपा मांगते हुए कि हम राधा रानी का गुणगान कर सकें। जब कृष्ण राधा रानी का गुणगान सुनते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं, और राधा रानी के गुणगान से कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं कि अपनी कृपा फ्रीली बांटते हैं। तो बस उसी कृपा को पाने के लिए हम राधा रानी का गुणगान करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो जानने का प्रयास करेंगे कि श्रीमती राधा रानी कौन है। बहुत बड़ी बुद्धि है। भगवान गीता में कहते हैं मनुष्य नाम शास्त्रेषु कश्चित् जन्म सिद्धयता रूपी सिद्धा नाम कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। हजारों हजारों मनुष्य में कोई एक मुझे बिरला व्यक्ति तत्व से जान सकता है। अब कृष्ण को जानना इतना मुश्किल है तो कृष्ण की अंतरंगा शक्ति को जानना कितना मुश्किल है। प्रभा जी अपने लेक्चर में बोल रहे हैं कि अगर आप किसी बड़े व्यक्ति को जब तक जानेंगे नहीं, बड़े व्यक्ति के आंतरिक इंटरनल अफेयर्स को कैसे जान पाएंगे, कि घर में क्या करता है, कैसे सोता है, क्या बनाता है, क्या उसका फेवरेट चीज है खाने पीने, ये सब कैसे जान पाएंगे जब तक उस बड़े व्यक्ति को आप जानते ही नहीं। कृष्ण को जान नहीं पाए तो कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, जो कृष्ण को आनंद देती है, अनादरी शक्ति, उसके बारे में कैसे जान पाएंगे। अंतरंगा शक्ति छोड़ो, कृष्ण की बहिरंगा शक्ति हमें समझ में नहीं आती। भक्ति मठा कहते हैं केशव कुमार जगत विचित्र, ये क्या विचित्र जगत है, कि पहाड़ नदियां समुद्र ये सब कहां से कैसे प्रकट हो रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड क्या है, साइंटिस्ट लोग बिल्कुल नए नए थ्योरी कुछ समझ में नहीं आता। इस पूरे भौतिक जगत को छोड़ो, ये छोटा ब्रह्मांड जो हमारा शरीर है इसको समझना कितना मुश्किल है। नाखून काटते फिर पड़ जाते, बाल काटते फिर पड़ जाते, कुछ समझ में नहीं आते, गाय घास खाते दूध देते क्या है, कुछ समझ नहीं आता। हम खाना खाते हैं वो पेट में कैसे पचता है अभी तक किसी वैज्ञानिक डॉक्टर को मालूम नहीं है, सब तुक्के मारते हैं, कुछ नहीं पता। आप किसी का पेट खराब हो जाए तो एलोपैथी होम्योपैथी नेचुरोपैथी सब फेल है, सब अपने अपने अंदाजे से इलाज कर रहे हैं। इस छोटे से शरीर को हम समझ नहीं पाए, भगवान की अंतरंगा शक्ति को कहां से समझे, लगभग असंभव। फिर भी जानने का प्रयास करें, क्योंकि जब कुछ जानेंगे तभी इच्छा विकसित होगी उनसे प्रेम करने की, उनकी सेवा करने के लिए। जब जानेंगे नहीं उनकी महिमा को तो कैसे हम उनकी सेवा करने की इच्छा करेंगे। ब्रह्मा जी ने दिव्य सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की भगवान को जानने के लिए, फिर उनको लगा हमने भगवान को जान लिया। नारायण उनके सामने प्रकट हो गए, बोले जान गए मुझे, बोले हाँ जान गया, बोले क्या जाने मेरे बारे में, बोले भगवान ये जान गया कि आपको जान ही नहीं सकते। ये जान श्री प्रभुपाद ने इतनी पुस्तकें लिखी भगवान के ऊपर, तो प्रभु बोला हम कृष्ण को नहीं जान सकते। उनके शिष्य ने पूछा फिर आपने इतनी पुस्तकें को लिखी, प्रभु बोला इसलिए इतनी पुस्तकें लिखी ताकि आप समझ पाए आप कृष्ण को नहीं समझ सकते। इसी तो एक बुद्धिमान व्यक्ति है वो जान जाएगा कि मैं कृष्ण और राधा को नहीं जान सकता, मेरी सीमित बुद्धि है, मैं नगण्य हूं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है उसके जीवन की एक ही अभिलाषा है कि मुझे राधा रानी के चरणों की सेवा है, मैं राधा रानी का दास अनुदास अनुदास होगा। ये सर्वोच्च अभिलाषा मानी जाती है आध्यात्मिक जीवन में। तो यही हमारी अभिलाषा, ये अभिलाषा, ये डिजायर, ये इच्छा प्रकार तब होगी जब हम उनकी महिमा के बारे में सुनेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। भक्ति भागवत महाराज का एक लेक्चर हमने अटेंड किया था सब 2013 में पुणे में, तो बहुत सुंदर लेक्चर था, उससे हमने कुछ एक्सर्ट्स लिए हैं। तो बता रहे थे कि 1975 में श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने आप को इस्कॉन की स्थापना कर दी थी और पूरे विश्व में जगत गुरु के नाम से स्थापित हो गए थे। तो जुहू में 1975 में 3 महीने भी रुके, उनसे मिलने काफी रिपोर्टर आते थे। तो एक बार 2 रिपोर्टर आए, एक प्रभु जी थे और एक माता जी थी, और दोनों हिंदी प्रेस हिंदी न्यूज पेपर के रिपोर्टर थे। जो लेडी थी, जो स्त्री थी, वो तो बड़ी धार्मिक थी, उसकी भगवान में श्रद्धा थी, और जो व्यक्ति था सो कॉल्ड जेंटलमैन, वो बड़ा चैलेंजिंग, देखिए आज स्वामी जी को फंसाऊंगा, ऐसे प्रश्न पूछूंगा। तो दोनों बैठ गए प्रभुपाद जी के सामने और बोलने लगे, स्वामी जी, उस व्यक्ति ने पूछा, पुरुष ने, मैंने देखा आपके इस मोमेंट में स्त्रियों को बड़ा निगलेक्ट किया जाता है, पीछे बैठाया जाता है, हमें पीछे बैठे पीछे बैठाया जाता है, उनको बहुत निगलेक्ट किया जाता है, ऐसे हंस के पूछा उसने, प्रभुपाद हंस के, साथ में वो स्त्री थोड़ा उसे भी सपोर्ट मिलेगा। प्रभुपाद ने उस लड़की की तरफ देखा और उससे प्रश्न पूछा, बोला आप ये बताओ पूरा जो ये ब्रह्मांड का मैनेजमेंट है इसमें डिफेंस किसके पास है? बोलो फंस गया, बताओ बताओ किसके पास डिफेंस है? उसने बोला दुर्गा देवी। और इस पूरे ब्रह्मांड के मैनेजमेंट में एजुकेशन शिक्षा का डिपार्टमेंट किसके पास है? बोलो सरस्वती। और बोले इस पूरे ब्रह्मांड के मैनेजमेंट में फाइनेंस लक्ष्मी संपन्नता किसके पास है? लक्ष्मी देवी। तो बोले फिर आप कैसे कह सकते हो कि स्त्रियों को बड़ा कम स्टेटस दिया है? और बोले हमारा जो मूवमेंट है हम किसके उपासक है? श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी की। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम स्त्रियों को यहां कम स्टेटस, पूरा का पूरा जो मूवमेंट है वो कंट्रोल कौन कर रहा है? श्रीमती राधा रानी। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं कि हम शाक्ते हैं, शक्तिमान की हम पूजा नहीं करते, हम शक्ति श्रीमती नारायण की पूजा करते हैं, उसके उपासक हैं। और ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही, षड गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु मानवेंद्रपुर की कृपा से ही हम श्रीमती नारायण की महिमा को जान सके हैं। नारायण की महिमा इतनी महान है कि कोई भी इसको समझ नहीं पाया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसको नहीं जान पाए। तभी गोनाग महाप्रभु प्रकट होते हैं राधा रानी की महिमा को जानने के लिए। वासु घोष जी का एक भजन है, यदि गौर ना होते तबे के होते के मानो धरिता मदे, राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगते जान तुमके। यदि गौर ना होते तो हम इस पृथ्वी पर कैसे रहते? और दूसरा, अगर गौर चैतन्य महाप्रभु अवतरित ना होते तो राधा रानी की महिमा उनके प्रेम रस की सीमा को कौन जान पाता? तो चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा और श्री प्रभुपाद की विशेष कृपा से हम राधा रानी के बारे में कुछ समझने का प्रयास कर पा रहे हैं। हमारे जितने भी आचार्यगण हैं उनका एक ही उद्देश्य रहा है कि कैसे हम राधा रानी के दासित्व को स्वीकार करें। हमारे संप्रदाय के प्रयोजन आचार्य कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी जी। रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपने ग्रंथ में एक बहुत सुंदर प्रार्थना लिखते हैं, बड़ी आसान सी प्रार्थना, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। भजामि राधाम अरविंद नेत्रम, स्मरामि राधाम माधुर्य स्मितस्याम, वदामि राधा करुणा भरद्रम, ततो मम अन्यस्तु गतिर्नास्ति।
बड़ा आसान सा समझने वाली बात है। भजा मैं राधा, मैं राधा रानी का भजन करता हूँ। किस राधा रानी का भजन करता हूँ? अरविंद नेत्र, जिसके नेत्र किसके समान है? कमल के समान। राधा रानी के जो नेत्र है बहुत ही कोमल, नर्म और हमेशा गीले रहते हैं कृष्ण प्रेम के अश्रुओं से। और जिस ढंग से कमल हवा में हिलता है, उसी ढंग से राधा रानी के नेत्र बड़े चंचल है, क्योंकि उनके हृदय हमेशा विचलित रहता है कृष्ण प्रेम से। तो ऐसी राधा रानी का वो भजन कर रहे हैं। भजामि राधा अरविंद नेत्रम, ऐसी राधा का स्मरण कैसे करें? स्मरामि राधा मधुर समृत श्याम। और उस राधा रानी का स्मरण कर रहा हूं जिसका स्मित, जिसका मुस्कान बहुत मधुर है। आप आते हैं यहां राधा रानी का मुझे दर्शन करते हैं, आपको लगता है राधा रानी की मुस्कान मधुर है? नेत्र कमल के समान दिखते हैं। हमारा यहां मंदिर में आने का, दर्शन करने का एक ही अभिप्राय होना चाहिए कि किसी ढंग से हम राधा रानी के सुंदर रूप से, कमल समान नेत्रों से, अपने मधुर उस मुस्कान से आकर्षित हो जाए। अगर राधा रानी की सुंदरता से हम आकर्षित नहीं हुए तो माया राधा की सुंदरता से आकर्षित है ही ना, और उसी से आकर्षित होकर फंसे रहेंगे। उस आकर्षण को काटने के लिए यही आकर्षण है। वदामि राधा करुणा भरद्रम, बदामी मैं कहूंगा, कथा करूंगा, गायन करूंगा, कीर्तन करूंगा, गुणगान करूंगा उस राधा का। किसका? करुणा भरद्रम, जो करुणा में सर्वश्रेष्ठ है। हम रोज प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्ण करुणा के सागर है। लेकिन राधा रानी को बोला गया करुणामयी, क्या अंतर है करुणा के सागर में और करुणामयी में? क्या अंतर है? हाँ, जो राधा रानी है उनका पूरा दिव्य देह करुणा से ही बना हुआ है। कृष्ण के तो हृदय में करुणा है, कृष्ण के बाकी लिंग्स में, अंगों में करुणा नहीं है। कृष्ण के मन में कौन है? राधा रानी। लेकिन जो राधा रानी का प्रत्येक अंग करुणा से है। हम जब बोलते हैं मेरा हृदय पिघल गया करुणा से, राधा रानी का पूरा शरीर पिघल जाता है करुणा से, करुणामय। और जो कृष्ण की करुणा है उसकी भी नियंता कंट्रोलर श्रीमती राधा रानी है। बहुत सी ऐसी लीलाएं देखिए, भक्ति के सामने सिंधु में भगवान श्रील प्रभुपाद कृष्ण की करुणा का वर्णन करते हैं कि कृष्ण कितना करुणा सा, कितना करुणा के सागर है। राधे जब भीष्म पितामह मृत्यु शैया में थे, तीरों की शैया में लेटे हुए थे, तो कृष्ण वहां उनका दर्शन करने गए और अपने भक्त को इतनी पीड़ा में देख के कृष्ण के हृदय में करुणा जागृत हुई और उनके आंखों से आंसू निकलने लगे। तो वहां श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जब करुणा जागृत होती है तो व्यक्ति ज्ञान भूल जाता है। तो प्रेम जहां होता है वहां ज्ञान नहीं रहता। तो करुणा जब जागृत हो गई कृष्ण ज्ञान भूल गए, और जो एक करुणा का मूर्तिमान रूप है वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी इतनी करुणामयी है कि वर्णन आता है, आप सब बरसाना गए तो बरसाना में लोग कहते हैं, लोग बता रहे थे जब बरसाना में ऊपर जाते हैं तो कितनी सीढ़ियां जाने के लिए, जो लाडी जी का मंदिर है 300 के आसपास सीढ़ियां। और वहां पे जो भक्त लोग होते हैं बुहारी करते हैं, यानी कि झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं, ताकि हमें कृपा मिले भक्तों की। तो ऐसे एक भक्त थे वहां पे, जो वहां पे सफाई कर रहे थे सीढ़ियों की। जात से भंगी थे, बहुत दरिद्र और भंगी, और सफाई कर रहे थे लेकिन राधे राधे नाम जप रहे थे साथ साथ में, और बहुत प्रेम से सफाई कर रहे थे। करते 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 वहां पे वृक्ष था और उस वृक्ष की शाखाएं सीढ़ियों पर आ रही थी, उसकी छाया, और उस वृक्ष के नीचे भी वो राधे राधे कहके सफाई कर रहे थे। उसकी इस भक्ति को देखकर, उसकी इस दीनता को देखकर स्वयं राधा कृष्ण वहां प्रकट हो गए। और शीत ऋतु थी, ठंडी का मौसम था, सुबह सुबह का समय था, राधा कृष्ण वहां प्रकट हो गए। तो राधा रानी को इतनी करुणा जागृत हो गई, उन्होंने कृष्ण उसने कुछ भी नहीं डाल रखा, अपना बाहरी दे दो ना उसको बाहरी में। कृष्ण पूछा ये तो नंद महाराज ने बोल दिया है, कृष्ण पीताम्बर में जाते हो पर अंगीकार बाहरी होता है, ये कैसे वापस जाऊंगा तो नंद महाराज फिर पूछेंगे। तो राधा ठीक है तुम मतो, राधा रानी अपनी शॉल उसके ऊपर डाल दी, जब राधा रानी की शॉल उस अंगी के ऊपर गिरी तो क्या होगा, उसके तो सारे प्रेम के लक्षण उत्पन्न हो गए और वो वहीं मूर्छित हो गया। तो प्रभुनंद सरस्वती ठाकुर जो कि गोपाल भट्टाचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के अंकल हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है राधा रस सुधा निधि, उसमें जो पहला श्लोक है उस श्लोक में बताया गया है कि जब कोई वायु राधा रानी की शॉल को छूती है भगवान श्री कृष्ण उस दिशा में जहां से वो वायु आ रही है उसको प्रणाम करते हैं। भगवान कृष्ण इतने पागल है कि जो वायु राधा रानी की शॉल को छूती है उस दिशा को भगवान प्रणाम करते हैं, वही शॉल उस भंगी के ऊपर राधा रानी ने गिरा दी। चलो ये कृपा है, तो ये राधा रानी की कृपा है, कुछ नहीं व्यक्ति कौन है क्या योग्यता है बस दे दी कृपा। और हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए नमो महामदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय, जो कृष्ण अपनी कृपा करते हैं वो कंडीशन दिलाते हैं सर्वधर्म परित्यज्य पहले सब धर्मों को त्यागो, त्याग के लिए त्याग अभी बहुत सी इच्छाएं बची, लगो और मेहनत करो और साधना करो और पता नहीं कब जाके दर्शन देंगे, भाव की स्थिति में जाके कुछ स्फूर्ति होगी। नहीं, श्रीमती नारायणी तुरंत कृपा करने को तैयार है, चैतन्य महाप्रभु तुरंत कृपा कर रहे हैं, क्यों जो चैतन्य महाप्रभु कृपा करे श्रीमती राधा रानी के महाभाव में है तो तुरंत कृपा हो रही है, इसी नाम से ये प्रार्थना है। और हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है, जैसे श्लोक में वादा बोला गया है कि राधा कृष्ण एक आत्मा दुहे देह धरे अने उन्हें बिरसे रस आस्वादन करे। तो श्याम श्री प्रभुपाद समझा रहे हैं कि राधा कृष्ण एक है लेकिन अलग अलग भी हैं। अलग अलग क्यों होते हैं? रस का आस्वादन करने के लिए, लेकिन ऐसे वो पूर्ण शक्ति है और राधा रानी पूर्ण शक्ति, राधा रानी पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्ति मान है, लेकिन दोनों में कोई अंतर भी नहीं है। आगे यहां कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी समझाएंगे जैसे कि अग्नि और ऊष्मा, सूर्य और सूर्य की रोशनी, कस्तूरी और उसकी महक, वैसे कृष्ण और राधा। अब जब अग्नि से ऊष्मा उत्पन्न होती है तो क्या अग्नि उस हीट को या ऊष्मा का अनुभव कर सकती है? सूर्य से सूर्य की रोशनी निकलती है, क्या सूर्य सूर्य की रोशनी का अनुभव करेगा? नहीं। कस्तूरी से महक निकलेगी, कस्तूरी महक को सुन सकती है? नहीं। इसी ढंग से कृष्ण से कृष्ण प्रेम राधा रानी निकलती है, इसलिए कृष्ण राधा प्रेम कृष्ण प्रेम को नहीं समझ सकते, समझे? अग्नि से ऊष्मा निकली, अग्नि ऊष्मा को नहीं जान सकती, कस्तूरी से महक निकली कस्तूरी महक को नहीं जान सकती, कृष्ण से राधा निकली कृष्ण राधा को नहीं जान सकते। राधा रानी के प्रेम को देख के कृष्ण मोहित हो जाते, क्या प्रेम है, मैं पूरे संसार को कंट्रोल करता हूं, ये मुझे नियंत्रित करती है। कृष्ण राधा रानी के हाथ में एक कठपुतली के समान है। शास्त्र में वर्णन आता है जब राधा रानी कृष्ण के सामने प्रकट होती है उनके हाथ से बंसुरी गिर जाती है, कृष्ण को पता नहीं चलता उनका जो सर पे मुकुट है वो नीचे गिर जाता है, उनका रोल त्रिभंग हो जाता है, सीधे खड़े नहीं हो सकते, बिल्कुल विचलित हो जाते हैं, क्या हो गए, अपने आप को संभाल ही नहीं पाते। अब वे जानते हो लीला जब रासलीला हुई थी कृष्ण अप्रकट हो गए थे, सारी गोपियां ढूंढ रही थी कृष्ण कहां है, तो गोपियों के साथ कुछ उपहास करने के लिए कृष्ण नारायण के रूप में वहां बैठ गए, गोपियां भी नारायण को नमो नारायण आपने हमारे कृष्ण को देखा है, मैंने ऐसे चुपचाप कर आगे चलेंगे। जब राधा रानी आई बोले अब देखो मजा आएगा, राधा रानी आगे कृष्ण सोचे थे अब ये भी ऐसे पूछ बोलेंगे मेरे को प्रणाम करेंगे, जैसी राधा रानी सामने आई चारों भुजाएं गायब हो गई, कृष्ण एकदम तनुप्रिय हो गए, तो भगवान पागल हो रहे क्या हो रहा है मुझे, पूरा जगत सर्व नियंता मैं हूं, कृष्ण राधा जब सामने आती मुझे क्या हो जाता है। तो बिल्कुल कृष्ण राधा रानी के सामने कठपुतली के समान है, तो कृष्ण राधा की महिमा को जान ही नहीं पा रहे। तो इसलिए जब अग्नि से ऊष्मा निकलती है तो अग्नि ऊष्मा का अनुभव नहीं कर पा रहा, इसी से कृष्ण से राधा उनकी शक्ति है लेकिन कृष्ण उस शक्ति का अनुभव उसकी महिमा को नहीं जान पा रहे और उसकी महिमा को समझने के लिए कृष्ण प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और साथ में ही जैसे सूर्य और सूर्य के रोशनी में कोई अंतर नहीं है, अग्नि और उसके उष्मा में कोई अंतर नहीं है, इसी ढंग से राधा और कृष्ण में कोई अंतर भी नहीं है, दोनों एक हैं और साथ ही साथ अलग हैं। फिर भी कई बार यह बोला जाता है कृष्णा इज द मेल गॉड एंड राधा इज अ फीमेल गॉड, कृष्ण पुरुष भगवान है राधा स्त्री भगवान है, लेकिन यहां कोई पुरुष और स्त्री का चक्कर नहीं है। अगर हम एक पुरुष और स्त्री वाली मेंटेलिटी रखेंगे तो हम राधा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। ये राधा रानी को एक स्त्री के रूप में ही हमारे सामने प्रकट होती है ताकि हम और कोई भाषा नहीं समझते, हम खाली स्त्री पुरुष की भाषा ही समझते हैं, लेकिन हमें परम सत्य की परम स्थिति को समझाने के लिए इस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो महाराज बता रहे थे कि राधा रानी के विषय में एक स्टेटमेंट दिए, ध्यान से सुनिए, दैट शी इज नॉट अ फीमेल। क्या स्टेटमेंट है बताओ, ये किस कोई बोलेगा, कोई इंग्लिश का ग्रामर का व्यक्ति होगा बोले क्या पालन में बात है। पहले बोल रहे शी, फिर बोला शी इज नॉट अ फीमेल शी, अब शी बोलना पड़ता है, मैं बोलो परम सत्य कौन सा, राधा के कृष्ण, अच्छा एक को ही बोलते हैं एक को शी बोलते हैं, समझ जाओ। तो शी रानी की राधा रानी इज नॉट अ फीमेल, उसको फीमेल नहीं समझना, ना वो कोई स्त्री है ना कोई विशेष स्त्री है, वो परम सत्य है, इस रूप में प्रकट हो गई है राधा कृष्ण एक द्विदेहधारी, दो देह धरते हैं, एक दूसरे के साथ रस का आस्वादन कर लेंगे। ये बड़ा गहरा तत्व है, पता नहीं कितना हमें समझ में आएगा, लेकिन कुछ समझने का एक थ्योरेटिकल नॉलेज रखने का प्रयास कर, तो वो एक है लेकिन अलग देह धारण करते हैं। एक बार एक केनिया में हमारे राधा कृष्ण के विग्रह हैं, कृष्ण श्याम वर्ण के हैं राधा तो है गौरांगी। केनिया ऐसा देश है जहां बहुत करप्शन है और वहां के जो भक्त हैं अफ्रीकन भक्त हैं कीर्तन में बड़े उत्साह से भाग लेते हैं, लेकिन साथ में जो आदत है चोरी करने की। जब प्रभुपाद पहली बार केनिया में गए थे, प्रभुपाद ने अपने कपड़े बाहर सुखाए तो कपड़े चोर लेते और जब प्रभुपाद अगले दिन पहुंचन दे रहे मैटर के सामने एक व्यक्ति बैठा वही प्रभुपाद के कपड़े डालते तो वहां बड़ी समस्या है, वहां इतनी चोरी करते हैं, वहां बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे वहां चोरी आते ही रहते, वहां आक्रमण होते रहते चोरों के, तो ऐसे आ गए चोर, ऐसे सारे लोकल आ गए, कीर्तन में भी नाचते हैं सारा देखते हैं क्या संपत्ति है, फिर आ जाएंगे चोरी करने, तो पूरे गैंग को लेके आगे चोरी कर ले, सारा फैल के सबको पकड़ लिया, उनका लीडर था वो सीधा गया विग्रह में, देख के ध्यान होंगे अरे ये कौन है, वो इसी। तो पुजारी ने बोला ही इज अवर गॉड, अरे ही इज अवर गॉड, व्हाट डू यू डू, बोले हम इसकी वर्शिप करते हैं। अच्छा वो शी, बोले शी इज हर कंसोर्ट, उनकी भार्या है, सोच सारा कुछ बोलता है, सब बोलते हैं रुक जाओ स्टॉप 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 स्टॉप। बोले क्या हो गया, बोले दीज पीपल आर वेरी नाइस पीपल, बहुत अच्छे लोग हैं। बोले क्यों अच्छे लोग हैं, ये काले व्यक्ति को पूछते हैं दूसरा नंबर एक उस काले व्यक्ति की जो पत्नी है वो गोरी है तो दे एक्सेप्ट कर, चलो वापस चलो, और उसे चोरी पीछे सबको ले गए। तो लेकिन ऐसा स्त्री पुरुष का कंसेप्ट हमने नहीं रखना, अगर स्त्री पुरुष का कंसेप्ट रखेंगे तो राधा कृष्ण की महिमा को नहीं समझ, राधा कृष्ण की लीलाओं में फिर सहिज्याइज्म आ जाएगा, अरे साधारण स्त्री पुरुष की लीलाएं है ना। प्रारंभिक अवस्था में राधा कृष्ण की लीला सुनते हैं, शुरू शुरू में हम जब जाते थे ऐसे कोई लीला सुनी तो एक भक्त ने मुझसे शेयर किया, जब मेरी राधा कृष्ण की लीला सुनी ना तो उसने पिक्चर का नाम दिया, उसमें ऐसे कर रहे थे हीरो हीरोइन ऐसे लीला कर रहे थे तो हमारा ध्यान वहां जाएगा क्योंकि हमें पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। तो ये अपने रस का आस्वादन करने के लिए ये दो भेद हैं। शास्त्रों में वर्णन होता है कि गोलोक धाम में राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ। तो कृष्ण एक बार रस मंडल स्थान पर वहां बैठे थे, स्वर्ण का सिंहासन था, कृष्ण तो परम सत्य है, आत्मा राम है, अपने आप में पूर्ण संतुष्ट है, तो राधा रानी की स्वरूप शक्ति है वो कृष्ण को वैसे ही आनंद दे रहे हैं। लेकिन जब कृष्ण की इच्छा होती कि इस आनंद का और विकास करूं तो एकाकी श्यामा राम होते, अकेले कोई आनंद प्राप्त कर नहीं सकता, तो कृष्ण के वाम हिस्से से बाह्य क्या बोलेंगे लेफ्ट वाम हिस्से से बाहिने हिस्से से राधा रानी का प्राकट्य होता है। और जब राधा रानी का प्राकट्य हुआ तो बहुत सुंदर आभूषणों से सुसज्जित मालती फूलों की माला डाली हुई राधा रानी वहां पर प्रकट होती है। और जब राधा रानी को कृष्ण देखते हैं तो कृष्ण की इच्छा होती है उनके साथ रास किया जाए। तो जब राधा रानी जानती है इच्छा उनकी प्रकट हो रही है तो वो भाग के जाती है कृष्ण के लिए पहले फूलों लेके आती है उनको अर्पण करने के लिए। तो राधा शब्द कैसे आया? रा का मतलब है कि रास मंडल और धा का मतलब है धाव माना, दौड़ते हुए गई कृष्ण के लिए फूल लेने के लिए, इसलिए नाम क्या आया? राधा। कहां प्रकट हुई वो? रा मतलब रास मंडल में प्रकट हुई और दौड़ के गई धाव माना लेने की भगवान के लिए फूल लाने के लिए दौड़ के। दूसरा प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि राधा का मतलब क्या है आप ज्ञान बताएंगे तात्पर्य प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? राधा शब्द क्यों आता है? ना केवल आराधना करते हैं टॉप मोस्ट आराधना। यहां पर लिख रहे हैं कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने अतेव राधिका नाम पुराणे वखाने। उनकी जो वर्षिप है आराधना है उससे क्या होता है कृष्ण की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, इसलिए सभी पुराणों में उनको राधिका कहा गया है। श्रीमती राधा रानी को वेद गोप्य भी बताया गया है यानी कि वेदों में उनको गुप्त रखा गया है। भगवान ने अपने योग माया को बोला कि राधा रानी को जितने भी शास्त्रों में राधा रानी का वर्णन हो रहा है इनके छुपा के रखो ताकि मैं ही प्रकट होऊंगा राधा रानी का गुणगान करने के लिए गुणराग महाप्रभु के रूप में। इसलिए सभी शास्त्रों में राधा रानी के बारे में कुछ पता नहीं चलता, अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं हैं राधा रानी के प्राकट्य के विषय में, राधा रानी के तत्व के विषय में। जब सुखदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवतम का वर्णन कर रहे थे तो सभी जब दशम स्कंद तक वो पहुंचे तो आचार्य जी कहते हैं कि सभी गोपियां और श्रीमती राधा रानी के हृदय प्रकट हुई और बोली कृपया करके ये हमारी लीलाओं का वर्णन मत करो। मैं क्यों आपकी लीलाओं का वर्णन नहीं करूंगा? तो इसीलिए तो मैंने भागवतम की रचना की है, भागवतम का मैं कीर्तन क्यों कर रहा हूं? आपका गुणगान करने के लिए, आपका तो वर्णन हम करेंगे। बोले अगर कैसे हमारा वर्णन करोगे, सारे साधु लोग बैठे हैं, ये हमारी रासलीला सुनेंगे, हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात। मैंने वो तो हम वर्णन करेंगे। मैंने बोला ठीक है वर्णन कर लेना बट हमारा नाम नहीं लेना। तो शुभ समय ठीक है ये प्रयास कर सकता हूं कि आपका नाम ना मांगू लेकिन पूरा हम आपके रासलीला का वर्णन तो करेंगे। तो शुभ के समय वर्णन किया, ये जो वर्णन कर रहे थे वो अपने एक्सटेसी को अपने भाव को रोक नहीं पाए। वो जहां राधा रानी का वर्णन आता है रोकते 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 भी वो राधा रानी का हिट दे देते हैं, है ना? ना अन्य वराधिता नूनम भगवान श्री ईश्वरा हरि। कहते हैं कि जब कृष्ण अप्रकट होते हैं रास लीला से तो सब गोपियां उनको ढूंढ रही हैं, तभी कृष्ण के चरण चिन्ह है साथ ही दो और चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। तो समझ गए ये कृष्ण एक गोपी के साथ भागे कहीं पर, और ये जो गोपी है ये बहुत पूर्ण रूप से कृष्ण की आराधना कर रही है, तभी तो कृष्ण उसको अकेले में दे गए। तो वो जो शब्द आता है वो राधा रानी का वो सूचक है। तो राधा रानी के इस तत्व को समझना आसान नहीं है, हम केवल उनकी कृपा की याचनाएं कर सकते हैं। राधा नाम की महिमा बहुत बताई गई है, हमें बताया कि राधा नाम का अर्थ क्या है, और कृष्ण जब राधा नाम सुनते हैं तो बिल्कुल पागल हो जाते हैं। और बताया गया है कि पूरी दुनिया तो कृष्ण के नाम का जप कर रही है लेकिन परम सत्य कृष्ण भी साधना करते हैं, मंत्र का जप करते हैं। कौन सा? राधा के नाम का। बोलते हैं जब राधा का नाम लेते हैं तो पूरे आंखों से उनकी अश्रुधारा बहना शुरू हो जाती है, शरीर में कंपन आ जाता है। जब कृष्ण छोटे थे उनका उपनयन संस्कार हुआ, गायत्री मंत्र दिए गए, उनकी दीक्षा हुई, तो फिर क्या करते थे? यशोदा माता उनको उठाती थी, लोग स्नान कर लो चलो गायत्री भी कर लो, ठीक है स्नान करते थे और गायत्री करने बैठ जाते थे। तो विश्वास हो तो कितना अच्छा बच्चा देखो हमारा, सब कुछ सारे नियमों का पालन कर रहा है। कृष्ण क्या करते गायत्री उनका उच्चारण थोड़ी करते थे, यूं करके अंदर अंदर क्या बोल रहे राधे जाते राधे राधे। पूर्ण रूप से कृष्ण एक, जहां कोई भी भक्त अगर राधा रानी का नाम ले रहा है वो कृष्ण के हृदय में उनकी करुणा को जागृत कर देता है। राधा रस सुधा निधि में प्रभुआनंद सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, ये बात समझने की बहुत गहरी बात है, अगर कोई भक्त प्रेम से राधा रानी के नाम का उच्चारण करता है तो कृष्ण की इतनी ज्यादा करुणा जागृत हो जाती है। कृष्ण की अपनी करुणा के लिए बहुत प्रसिद्ध है कौन सा वो श्लोक है जिसको सुन के सुखदेव गोस्वामी जी भी भक्त बन गए थे, अहो बकी काल कोटन, कृष्ण की कृपा का क्या वर्णन किया जाए, जो पूतना आपने स्तन पे कालकूट जहर लगा के आए थे, कृष्ण का वध करने के लिए आए थे, कृष्ण ने उसको अपने मां का स्तर दे दिया। अगर कोई करुणा करेगा भी चलो माफ किया जाओ दोबारा से राक्षसी रहो, हम किसी को माफ करेंगे तो क्या करेंगे, उसको प्रमोशन थोड़ी दे देंगे, बताया करो ये गलती उठी तो माफ करो जाओ, उसी स्थिति में रहेगा उसको प्रमोशन थोड़ी दे देंगे। नहीं, कृष्ण की करुणा देखिए, माफ ही नहीं किया, कहां वो कृष्ण का खून चूसने आए थे और उसको वो स्टेटस दे दिया, कृष्ण को दूध पिला लिया, मां का स्टेटस। जब ये करुणा सुने तो सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्म वाले थे वो पूरे रूप से भक्त बन गए। तो ये कृष्ण की करुणा है, लेकिन ये करुणा भी कुछ नहीं है। जब कृष्ण किसी भक्त को प्रेम से राधा रानी का नाम लेते हुए सुनते हैं तो करुणा की सारी सीमाओं को कृष्ण तोड़ देते हैं। तो एक ऐसा भक्त जो कृष्ण का राधा रानी का नाम ले रहा है लेकिन जो बहुत बड़ा वैष्णव अपराधी है, कृष्ण क्या करते हैं, सारे वैष्णव अपराध माफ कर देते हैं और उसको राधा रानी का दास्य प्रदान करते हैं। कैसे समझे इसको, सारे शास्त्रों के नियम को तोड़ दिया। जब दुर्वासा होने से अपराध हुआ अम्बरीश महाराज के प्रति, दुर्वासा मुनि स्वयं गए विष्णु के पास कि मेरी रक्षा करो सुदर्शन चक्र से, भगवान ने हाथ खड़े कर दिया, कुछ नहीं कर सकता, केस मेरा है ही नहीं, मेरे पास है ही, आपको अम्बरीश महाराज से ही माफी मांगनी पड़ेगी। वापिस आए दुर्वासा मुनि, अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगी, अभी उनको क्षमा दी गई। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं कृष्ण, किसी ने एक बार प्रेम से राधा रानी को पुकार दिया, कृष्ण उसके सारे वैष्णव अपराध माफ कर रहे हैं। केवल वैष्णव अपराधी माफ नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, राधा रानी की सेवा प्रदान कर रहे हैं। इतना ऊंचा स्तर जिसके लिए बड़े बड़े आचार्य प्रार्थना करते हैं, सामना करते हैं, कैसे समझे इस बात को। ये जो श्लोक ठाकुर कह रहे हैं ये मुख्यतः भगवान कितना प्रेम करते हैं श्रीमती राधा रानी से, कितना ऋणी अनुभव करते हैं कि किसी ने एक बार भी राधा रानी का नाम ले लिया, कृष्ण बोलता मुझे इसलिए कृपा करनी करनी है, उसके सारे अपराध भगवान उसको बिल्कुल भूल जाते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि आज हमें बहुत बढ़िया कभी धन्यवाद क्या सूत्र बता दिया आपने, आप तो खुले में रहो बस, आप तो कोई डरना नहीं, अपराध अपराध क्या है, आप खुले में घूमेंगे, प्रेम से पुकार देंगे राधे राधे राधे, बस हो गया काम, भगवान को माफ करना ही पड़ेगा। नहीं, देखिए भक्ति में चीटिंग नहीं चल सकती, सबको धोखा दे सकती है, भगवान को नहीं दे सकती, तो नाम के बल पे अपराध नहीं हो सकता, ये तो जाने अनजाने कुछ अपराध हो जाता है, लेकिन भक्त सिंसियरली राधा रानी के नाम का उच्चारण करता है तो भगवान उसके सारे अपराधों को माफ कर देते हैं। तो आज का दिन राधा अष्टमी का दिन है, राधा अष्टमी का दिन बहुत महान है हमारे लिए। अब राधा रानी पुरुष है स्त्री है इसके चक्कर में नहीं पड़ना। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु जी के नाभि से कमल निकला उसके ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो गर्भोदक्षाई विष्णु पुरुष है कि स्त्री है, साधारण क्या स्त्री जन्म देती है कि पुरुष जन्म देते हैं, बोलिए, तो यहां तो गर्भोदक्षाई विष्णु को जन्म दे दिया ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी को स्त्री बोलना चाहिए, नहीं ना, नहीं बोलते हैं। तो ये परम सत्य, ये समझ हमारी समझ से बाहर। तो जब जिस रंग से कृष्ण अजन्मा है उसी रंग से राधा रानी भी अजन्मा है। फिर राधा रानी क्यों प्रकट होती है, राधा रानी इसलिए प्रकट होती है कि हम सब पे करुणा करने के लिए। और राधा रानी का जो प्राकट्य है वो भी बड़ा विशेष है, वो कोई मां के गर्भ से प्राकट्य नहीं हुआ। जब राधा रानी प्रकट होती है विश्वभानु जी को राधा रानी मिलती है एक कमल के फूल के ऊपर, और विश्वभानु उनको घर लेकर आते हैं। लेकिन राधा रानी प्रकट हुई तो कैसे थी, बिल्कुल गूंगी बहरी और अंधी, लेकिन दिखने में बड़ा दिव्य स्वरूप था उनका। कृष्ण गोकुल में प्रकट हो चुके हैं तो नारद मुनि जी को मालूम चला कि भगवान का अवतार हो गया, तो नारद ने सोचा चलो आप दर्शन करके आते हैं भगवान के, तो गोकुल में गए और गोकुल में जाके नंद महाराज के घर में गए। नंद महाराज के घर में जाके देखा कृष्ण एक पड़े हुए झूले में और सारे के सारे ब्रज की स्त्रियां आसपास उनको घेर के खड़ी हैं और कृष्ण की सुंदरता का आस्वादन कर रही हैं। कृष्ण अलग अलग हाथ पैर हिला रहे हैं और सब लोग बहुत उनको देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। और नारद मुनि ने देखा कि ऐसा स्वरूप उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं कृष्ण का, बिल्कुल नग्न अवस्था में। बोले वाह भगवान परम सत्य ऐसी अवस्था में क्या दिव्य दर्शन है। जब चैतन्य महाप्रभु अलावा प्रयाग में थे, रूप गोस्वामी उनको मिलने गए, तो रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अपने घर में आमंत्रण दिया था। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु की भेंट एक और वैष्णव से हुई थी जिनका नाम था रघुपति उपाध्याय। ये बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखते थे भगवान के गुणगान में। तो महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय को बोला कि कुछ कृष्ण का गुणगान करो। तो रघुपति उपाध्याय ने एक कविता सुनाई, उन्हें बोले जो लोग इस भौतिक अस्तित्व से डरते हैं, हो सकता है बड़े बड़े वेदों की औषधियों की शरण ले या महाभारत या पुराणों की शरण ले, लेकिन मैं तो उस नंद महाराज की पूजा करूंगा जिनके आंगन परम सत्य स्वयं खेलते हैं। तो वही नारद मुनि को लग रहा था कि वहां परम सत्य ऐसे शिशु बनकर घूम रहे हैं। तो फिर वो नंद महाराज के पास गए, बोले आपका जो पुत्र है ये बहुत विशेष पुत्र है, ये पूरे ब्रज में सबको आनंद देगा, लोग इसका गुणगान करेंगे, ये सबको शुद्ध करेगा और आपको किसी साधना की आवश्यकता नहीं है, किसी यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो केवल अपने पुत्र से प्रेम करना है, इसी में आपको परम सिद्धि मिल जाएगी। अच्छा तो हम सबके लिए भी ये आदेश है, हमें क्या करना है, केवल कृष्ण से प्रेम करना है। लेकिन क्या इतना सरल है? इतना सरल नहीं है, इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। बोला केवल आपको प्रेम ही करना है बस, और आपको परम सिद्धि मिल जाएगी। तो इस ढंग से नारद मुनि ने उनके दर्शन किए और फिर उनको सोचा अब कृष्ण प्रकट हो गए हैं तो निश्चित रूप से राधा रानी भी अवश्य प्रकट हुई होगी। बोला उनको मैं ढूंढता हूं, ब्रज के एक एक घर में जाऊंगा, राधा रानी के दर्शन करूंगा। जाते हैं एक घर में, हर एक घर में जाते हैं, हर कोई नारद मुनि का बहुत स्वागत करते हैं, नारद मुनि जी आए। और जहां भी जाते हैं सब लोग नंद नंदन कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, कृष्ण राधा मुझ में बहुत आनंद आ रहा है। जाते 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 फिर वो विश्वभानु के घर में जाते हैं, विश्वभानु जी को प्रणाम करते हैं, विश्वभानु को प्रणाम करते हैं, बोले आपका मैं देख रहा हूं आपका बहुत सामर्थ्य है, आपके कौन कौन संतान है? तो विश्वभानु जी बुलाते हैं अपने पुत्र को, क्या नाम है उनके पुत्र का? श्रीराम। बोले ये हमारे पुत्र हैं श्रीराम। जब नारद मुनि श्रीराम को देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, उनका बड़ा दिव्य रूप, नारद मुनि का आलिंगन कर लेते हैं। बोले आपका ये पुत्र है बहुत विशेष है, ये कृष्ण और बलराम के साथ खेला करेगा, उनके साथ लीलाएं करेगा। ठीक है, नारद मुनि जब जाने लगते हैं तो विश्वानु बोलते हैं एक मिनट रुकिए, आपसे कुछ बात करनी है। बोले हमारे पास सब कुछ है लेकिन दुख की बात है कि मेरी एक पुत्री भी है, बहुत सुंदर है, बहुत दिव्य रूप है उसका, लेकिन बेचारी अंधी है, गूंगी है, बहरी है, आप कुछ कृपा कीजिए वो ठीक हो जाए। नारद मुनि बड़े उत्सुक हो गए हैं, कुछ विशेष मतलब दिखाओ। उनको ले गए उस कक्ष में, हम उस कक्ष में ले गए, बोले ये हमारी बेटी, उठा के उन्होंने उनको नारद मुनि के गोद में डाल दिया। वो हो तो नारद मुनि के गोद में स्वयं राधा रानी आए, नारद मुनि को तो बस कंपन शुरू हो गई। क्या ये कौन है? इसको तो देखने मात्र से ही मेरे हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। और जैसे उन्होंने दिव्य रूप को देखा छोटी सी श्रीमती राधिका का, क्या हुआ बताइए? जब किसी को श्रीमती राधारानी के दर्शन हो जाएंगे तो क्या हुआ? अगर आपको श्रीमती राधारानी आज दर्शन दे दी है क्या हुआ? आनंद आएगा बस, और क्या हुआ? मूर्छित हो जाएंगे, हम सहन ही नहीं कर पाएंगे, ये दिव्य स्वरूप हम समझे सहन ही नहीं होगा, नारद मुनि से सहन नहीं होगा, देखते ही मूर्छित हो गए। कितनी देर तक मूर्छित रहे? बोलते दो मुहूर्त तक, 96 मिनट्स मूर्छित। ऐसा दिव्य रूप दिखाई नहीं, हालांकि वो अंधी है, गूंगी है, पहली देखते ही मूर्छित हो गए। फिर धीरे 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 भाई चेतना में आए, बोले ऐसा सुंदर रूप, मैं तो हर जगह घूमता हूं, हमने कहां कहां की सुंदरता दिखी हुई है संसार में, बताओ, दिल्ली, बॉम्बे, सारे मेट्रोस, कई लोग यूरोप घूम के आए होंगे, अमेरिका, इसी संसार की सुंदरता देखी है ना। नारद मुनि मैंने कहां कहां की सुंदरता देखी है, ब्रह्म लोक, इंद्र लोक, रुद्र लोक, कहां 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 की सुंदरता देखी, मैंने पार्वती जी की सुंदरता को देखा है, मैंने लक्ष्मी जी की सुंदरता को देखा है, मैंने तो मोहिनी रूप को भी देखा है, लेकिन ये सुंदरता क्या है मैं समझ नहीं पा, इतनी विशेष सुंदरता। निश्चित रूप से आप श्रीमती राधिका है, आप महायोगिनी है, और बहुत सुंदर सुंदर भाषाओं में श्लोकों में वो राधा रानी का गुणगान करना शुरू कर देती है कि आप सर्वशक्तिमयी हैं, आप सर्वकांतामयी हैं, और आप कृष्ण को आनंद प्रदान करते हैं, ब्रह्मा शिव इत्यादि महादेव भी आपकी स्थिति को नहीं समझ सकते, और इतनी प्रार्थना करते करते फिर अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है प्रार्थना करने का, पहले हमें गुणगान करना चाहिए फिर इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। हम लोग इतने परेशान होते हैं, पहले इच्छा बोल देते हैं भगवान ये देखो, पहले गुणगान तो करो, तो पहले गुणगान किया फिर इच्छा करती, क्या इच्छा करती नारद मुनि ने कि मैं आपका अब किशोरी रूप देखना चाहता हूं। ये भक्ति की विशेष महिमा है, एक भक्त कभी भी अपनी भक्ति से अपने स्टेटस से संतुष्ट नहीं होता, भक्ति करते हैं तो साथ में तृष्णा और बढ़ जाती है, एक ऐसी संतुष्टि है जो साथ में असंतुष्टि भी उत्पन्न करती है। अगर हम सही ढंग से जप कर रहे हैं तो 16 माला पर संतुष्ट नहीं होंगे, और जप करेंगे और भी संतुष्ट नहीं होंगे, और जप करेंगे, राधा रानी के दर्शन होंगे बाल रूप में, इतना सुंदर रूप उन्होंने देखा नहीं कभी, खुद ही कह रहे हैं, लेकिन यानी कि मतलब संतुष्ट हो जाए, इतना सुंदर रूप आप ही बोले मैंने कभी देखा नहीं, मतलब क्या करना है, अब मुझे किशोरी रूप दिखाई, और फिर क्या किया उन्होंने, भगवान की सुंदरता का गुणगान करना शुरू कर दिया। जब भगवान की सुंदरता का गुणगान करना शुरू कर दिया तो श्रीमती राधा रानी अपने किशोरी रूप में प्रकट हो गए, किशोरी राधा रानी की। तो बस जब राधा रानी किशोरी रूप में प्रकट हो गई, कितनी आयु है राधा रानी की, लगभग 14 वर्ष, और साथ में उनकी कई सखियां, ओह किशोरी रूप में जब देखा होगा राधा रानी क्या हुआ होगा, फिर से क्या हुआ होगा, मूर्छित हो गए, फिर से मूर्छित हो गए, वो मूर्छित हो गए, अब सारी सखियां वहां खड़ी हैं, मैंने बोला क्या है मूर्छित हो गया सारा डिस्टर्बेंस के लिए राधा रानी प्रकट हुई है दर्शन देने के लिए, और एक मूर्छित हो गए, ये किशोरी रूप इतना सरल थोड़ी है, इतना दुर्लभ रूप है, और इसको बोले मूर्छित हो गए, हम यहां पर समझ लो यहां पर आज राधा अष्टमी है, यहां के भक्त लोग आया और देखते हैं मूर्छित हो गए, पीछे लाइन लगी तो क्या बोला सब, उठाओ यार इसको उनको ले जाओ पीछे, तो क्या सब सखी बोले मूर्छित हो गए क्या करें, उन्होंने क्या किया राधा रानी के चरणों को धोया, उनका चनामृत लगे नारद मुनि पे छिड़का, नारद जी पे भारी चेतना में आए, भारी चेतना में आए फिर से गुणगान शुरू कर दिया। फिर सखियों ने बोला कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, निश्चित रूप से तुमने भगवान हरि को प्रसन्न किया होगा तभी तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ब्रह्मा जी शिव जी भी इस रूप का दर्शन नहीं कर पाते, रूप का दर्शन तो छोड़ो वो तो राधा रानी को समझ भी नहीं पाते, वो तुम्हें साक्षात दर्शन हो रहे हैं, लेकिन दर्शन बंद होने वाले हैं, राधा रानी भी अब प्रकट होने वाली है, जल्दी से परिक्रमा कर लो, तो राधा रानी फटाफट परिक्रमा करते हैं, और फिर राधा रानी अप्रकट होने वाली हुए जब, तो सब सखियां बोलती घबराओ मत, तुम्हें दोबारा से दर्शन होंगे कुसुम सरोवर पे, कुसुम सरोवर के तट पे एक अशोक वृक्ष है, उस वृक्ष में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, जब समय आएगा तो तुम्हें हम सब फिर से दोबारा दर्शन देंगे, ये कहके सखियां और श्रीमती राधा रानी अपने किशोरी रूप को प्रकट करती है, और दोबारा से वो अपने बाल रूप में आ जाती है। जब बाल रूप में आ जाती है आपको बाल रूप से फिर से उनकी नारद की गोद में आ गई, ये आध्यात्मिक जीवन में कब कौन बड़ा हो जाएगा छोटा हो जाएगा समझ में नहीं आएगा, हम अपनी भौतिक बुद्धि समझने का प्रयास करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, जब बाल रूप में आ गई तो फिर से नारद मुनि गुणगान करना शुरू कर दिया। फिर विश्वानु आए उस पक्ष में, बोले आप क्या कर रहे हो बच्ची का गुणगान कर रहे हो, बोले हाँ आप नहीं जानते ये विशेष बालिका है आपको धीरे धीरे मालूम चलेगा। तो इस जंग से नारद मुनि ने पहली बार जब इस जंग से राधा रानी के दर्शन किए, कृष्ण ने भी पहली बड़ी राधा रानी के दर्शन किए, उसके बारे में पुराणों में आता है। जब विश्वानु और कीर्तिदा के यहाँ पे राधा रानी प्रकट हुई, अब राधा रानी ऐसी अवस्था में है, बोले क्या करें, ये ठीक है बालिका प्रकट हुई है, उसका जन्म हुआ है, तो कुछ उत्सव करना चाहिए, कुछ यज्ञ करना चाहिए। तो ब्राह्मणों को बुलाया गया, सारे ब्रजवासियों को बुलाया गया, बहुत उत्सव हुआ। तो बाहर के प्रांगण में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, मंत्रों की स्तुति कर रहे थे, और राधा रानी के अंदर के कक्ष में थी। विश्वभानु और कीर्तिदा सब अपने अतिथियों से मिल रहे थे। नंद महाराज और यशोदा माता भी आए कृष्ण और बलराम को लेके, वो एक बहुत छोटे छोटे बालक थे। तो सब मिल रहे हैं आपस में, और नंद महाराज, विश्वभानु, यशोदा माता, कीर्तिदा मिल रहे हैं। कृष्ण को छोड़ दिया उन्होंने, और कृष्ण रेंगते 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 वहां पहुंच के जहां राधा रानी को झूले में ऐसे डाला हुआ था, और वहां पहुंच के क्या किया कृष्ण ने, उस झूले को पकड़े कृष्ण खड़े हो गए, और जब खड़े हुए तो उन्होंने पहली बारी श्रीमती राधा रानी का दर्शन किया। और जब पहली बारी श्रीमती राधा रानी का कृष्ण ने दर्शन किया, तो कृष्ण के दिव्य देह से जो सुगंध आई, उस फ्रेग्रेंस को, उस सुगंध को राधा रानी ने पहचान लिया। राधा रानी ऐसी अंधी नहीं थी, लेकिन जब कृष्ण इस धराधाम में प्रकट होने वाले थे, तो राधा रानी बोला मैं तो प्रकट नहीं हूंगी। बोले क्यों, आपके बिना मैं कैसे प्रकट हो जाऊंगा? तो राधा रानी ने बोला कि मैं केवल आपके दर्शन करना चाहती हूं, आप इस भूमि में प्रकट होंगे तो पता नहीं किन किन लोगों के दर्शन करने पड़ेंगे। कृष्ण ने बोला मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि हमेशा मेरे दर्शन करते रहोगे, और जब तुम प्रकट होगी, सबसे पहला व्यक्ति जिसको तुम देखोगी वो कौन होगा? मैं। तो बस राधा रानी प्रकट तो हो गए थे, लेकिन प्रतीक्षा कर रहे थे कब कृष्ण अपना वचन पूरा करेंगे। कृष्ण अपना वचन पूरा किया, दिखने में छोटे छोटे बालक बालिका, लेकिन हैं तो परम सत्य ही। तो जब वो खड़े हुए कृष्ण, राधा रानी को उनके दिव्य देह की सुगंध आई, तो फिर क्या किया श्रीमती राधा रानी ने पहली बारी अपने नेत्रों को खोला। श्रीमती राधा रानी की, और उनको अपने प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन हुए। ये कथा पुराणों में इस तरह से वर्णन आता है। और हम देखते हैं एक जगह और वर्णन आता है कि कैसे राधा रानी का नाम सुनते ही कैसे कृष्ण को राधा रानी से आकर्षण बढ़ा। मनाता है कि जब कृष्ण सुबल, मधुमंगल इत्यादि के साथ गोचरण लीला कर रहे थे, तो लीला करके गांव उछलाते वो निकल रहे हैं कृष्ण, और वहां पर जब कृष्ण ने फिर बोला ठीक है अब मैं बंशी बजाता हूं, देखो क्या प्रभाव पड़ता है, तो कृष्ण ने बंशी बजाए। जब बंशी बजाए तो सब जो बादल थे वो कृष्ण के सर के ऊपर आ गए, उन्होंने बिल्कुल बंशी के साथ साथ अपना गरजना शुरू किया, और पेड़ों से शहद टपकना शुरू हो गया, यमुना का जो प्रवाह था उल्टी दिशा में हो गया। तो कृष्ण ने बोला देखो सारे के सारे पेड़ों पर फूल खिलने लगे, बड़ी सुंदर सुगंध आने लगी। कृष्ण ने मधुमंगल की तरफ देखा, देखा क्या वंशी का प्रभाव है, कितनी सुंदर सुगंध आ रही है। मधुमंगल बोलता है मुझे तो कोई सुगंध नहीं आ रही, और मुझे यह सुगंध अच्छी भी नहीं लगती, तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है? कहता है मुझे जब देसी घी में जो लड्डू बनाए जाते हैं वही सुगंध मुझे अच्छे लगते हैं, ये क्या फूलों की सुगंध तुम खाओ, तो हमें जब देसी घी में जब लड्डू बन रहे हैं तो उसकी सुगंध अच्छी लगती है। कृष्ण बोला कैसे, कह वो अपनी बंशी में जाके वो लाओ तुम भगवान। कृष्ण बोला उसके लिए मैं बंशी थोड़ी बजाऊंगा, ये छोटी इच्छा है तुम्हारी, देखो वो कल वृक्ष है उसके नीचे खड़े हो जाओ और बोलो कि मुझे आपको लड्डू चाहिए सुगंधित, आ जाएंगे आ जाएंगे, हाँ जाके देखो ना कल वृक्ष नीचे जाके मधुमंगल मुझे लड्डू आ जाए। कितने लड्डू चाहिए? 500 लड्डू चाहिए। ठीक, कुछ हुआ नहीं। कहा है कृष्ण, तभी दूर से देखते हैं पूर्णमासी आ रही है, थाल थाल बड़े बड़े, क्या है बोलते क्या है, बोले लड्डू, अरे वाह, और सारे के सारे मधुमंगल को दे दिए। वाह कृष्ण वाह, कल कृष्ण बड़े काम करते हैं। कृष्ण को विश्वास नहीं था कैसे इतना हो गया, 500 लड्डू मांगे और थाल लेके तुरंत आ गए। तो उन्हें पूर्णमासी को बुलाया, पूर्णमासी ये क्या है, ये कल्पवृक्ष ने बोला लड्डू लाने के, कैसे हो ऐसा? अरे ये तो लड्डू मैं इसलिए, किसने दिया? बोले मुखरा की जो पोती है राधा रानी, उसका ब्याह निर्धारित हुआ है। मुखरा की पोती क्या नाम है उसका? बोले क्या नाम है? बोले राधा। क्या नाम है, राधा, राधा, राधा। सुनते ही कृष्ण स्तब्ध हो गए, पहली बार उन्होंने नाम सुना राधा तो बिल्कुल भी स्तब्ध हो गए। मधुमग्न बोला क्या हो गया, मेरे कुछ अजीब सा हो रहा है। अब कृष्ण के हृदय में इसको बोलते हैं पूर्व राग, जब दो प्रेमी मिलने से पहले जब उनके अंदर आसक्ति बढ़ती है उसको बोलते हैं पूर्व राग। तो कृष्ण के अंदर राधा के लिए तृष्णा और बढ़ती गई और बढ़ती गई। कब वो दिन आएगा जब मैं राधा रानी का दर्शन करूंगा और राधा रानी से भेंट करूंगा। तो ये दिव्य लीलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के नाम से आकर्षित रहते हैं, राधा रानी के रूप से आकर्षित रहते हैं। एक बार राधा और कृष्ण सखियों के साथ थे तो कृष्ण ने बोला हम वो चौकस, चौकस बोलते हैं, चौकस का खेल खेले। तो लविदास सखी ने बोला तुम ग्वाल वाल हो तुम्हें क्या खेलना आएगा, चौकस ही बोलते हैं, डाइस, चौकर, चौसर, चौपर, चलो डाइस समझ गए ना। तो वो खेल खेलते हैं तो लड़िका सखी तो हमेशा गुस्सा दिलाती थी, गुस्से में जाती थी भगवान को और छेती जाती थी, तुम बाल बाल वाले तुम क्या जाते हो तो क्या से खेलते हैं। बोले आज देखना आज मैं हराऊंगा। बोले देखो उसके लिए पहले कोई चीज गिरवी में रखनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं वृक्ष का गिरवी पान, खाने वाला पान नहीं पान होता है। बोले अपनी कोई वस्तु रखो यहाँ पे, तुम हार गए भाग के पता नहीं चला क्या हुआ, पैसे रखो। कृष्ण बोला क्या है मेरे पास। बोले वंशी है तुम्हारी, वंशी भी आते रहते हो, चलो वंशी रखो। कृष्ण की वंशी रखवा लेते हैं। बोले इनसे भी कुछ लो, राधा रानी से भी, हाँ तुम भी तो कुछ। राधा रानी बोले मुझसे क्या, मैंने तो जीतना ही जीतना है। बोले नहीं कुछ तो देना ही पड़ेगा, गेम का ये रूल है, अपना नेकलेस दो। राधा रानी नेकलेस देती है, कृष्ण ने वंशी दे दी, मतलब खेलो। तो खेला शुरू करते हैं तो कृष्ण राधा रानी के रूप को देखते हैं और राधा रानी के जो नयन है वो तो हमेशा नर्तन करते रहते हैं। और उनकी कटाक्ष से जब राधा रानी ने अपने साइड लॉन्ग ग्लांसेस से कटाक्ष से देखा तो बस कृष्ण तो खेल नहीं पा रहे, वो बोलते क्या है फेंकते क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्हें लता सखी को बुलाया क्या ये चीटिंग है, चीटिंग है, देखो ये क्या कर रही है, अपनी सखी को समझाओ। बोले क्या तुम मत देखो उनकी तरफ, तुम अपने, तुम तो अपने तुम्हारा मन चंचल है, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो इस संग से कृष्ण अपने आप को संभालने नहीं पाते, वो पूरी गेम हार जाते हैं। हार जाते हैं तो बोले कृष्ण बोलते हैं तो ऐसा ठीक नहीं हुआ, ये तो आप सबने मिलकर चीटिंग किया मेरे साथ, मैं ऐसे ही चाह रहा हूँ, चलो मैं वंशी को बचा रहा हूँ। कौन सी वंशी, पहले से निर्धारित हो आपको कोई वंशी नहीं मिलेगी। बोले आप तो वंशी देनी पड़ेगी। बोले अगर चाहिए तो कुछ और दो और फिर ये वंशी वापस मिल जाएगी। बोले क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो दो चीजें हैं, एक मेरा मन है एक ये वंशी है। मेरा मन तो आपकी सखी ने चुरा लिया, वंशी आपने रख ली, तो मैं क्या दूं। तो बोला नहीं कुछ ना कुछ तो होगा, अपना मन है तो मन ही दो मुझे फिर। तो बोले ठीक है, अब इनका जो मन है राधा रानी ने अपने हृदय में छुपा के रखा है, तो मैं कौन से लाऊं, फिर कहीं से भी लाओ। ठीक है फिर मैं लाता हूं उनके हृदय से। तो कृष्ण भागते हैं राधा रानी के हृदय से अपने मन को निकालने के लिए, सारी की सारी सखियां डर के भागती हैं, वंशी वहीं छोड़ के सब भाग जाती है। तो इस ढंग से श्रीमती राधा रानी हमेशा कृष्ण को डिफीट ही करती है। कृष्ण एक बार राधा रानी के द्वार पे नॉकिंग कर रहे हैं, तो राधा रानी पूछते हैं बाहर से कौन है जो एक उंगली से दरवाजा खटखटा रहा है। कृष्ण बोलते हैं मैं माधव हूं। बोले माधव तो बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु मेरे द्वार पे आ गई क्या। बोले नहीं मैं चक्रधारी। बोले चक्रधारी क्या तुम कोई कुमार हो क्या। बोले नहीं मैं तो पूरे विश्व को धारण करता हूं। अरे विश्व को धारण तो अनंत शेष करते हैं, क्या तुम अनंत सर्प हो क्या। बोले नहीं मैं तो सर्पों का दमन करता हूं। बोले सर्पों का दमन तो गरुण करते हैं, क्या तुम गरुण हो क्या। बोले नहीं मैं गरुण में बैठे वाला हरि हूं मान लो। तो इस ढंग से हर बात में राधा रानी और कृष्ण की ये सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। और जो पूरे जगत को नियंत्रित करते हैं वो राधा रानी के आगे अपनी हार को स्वीकार करते हैं। तो आज के दिन हम श्रीमती राधा रानी का दर्शन करेंगे, राधा रानी के चरणों का दर्शन करेंगे। तो राधा रानी के चरणों के और राधा रानी के दर्शन का क्या महत्व है? राधा के दर्शन में और कृष्ण के दर्शन में क्या अंतर है? कुछ अंतर होगा? कोई गेस कर सकता है? अंतर है कृष्ण के दर्शन में और राधा रानी के दर्शन में। राधा और कृष्ण के दर्शन में क्या अंतर हो सकता है? देखिए, जब कृष्ण का कोई दर्शन करता है इस सृष्टि में, क्या कोई ऐसे लोग हैं जो कृष्ण से द्वेष करते हैं? कितने लोग हैं जो बहुत ही जगत में हैं, सब द्वेष करते हैं, और कृष्ण की भूमिला में भी देखते हैं कितने असुर हैं जो कृष्ण से द्वेष करते थे। जब कृष्ण के सामने प्रकट भी होते थे तो क्या उनका द्वेष समाप्त हो जाता था? नहीं, तभी वो द्वेष करते रहते थे। कालिया ने जब कृष्ण के दर्शन किए तो उनकी सुंदरता तो देखकर कालिया हैरान हो गए, उनका द्वेष खत्म नहीं हुआ। अरिष्टासुर, केसी, इतने असुर आए, कृष्ण की सुंदरता को देखकर मोहित हुए लेकिन द्वेष समाप्त नहीं हुआ। लेकिन इस पूरी सृष्टि में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो श्रीमती राधा से द्वेष करता। ये श्रीमती राधा रानी की विशेषता है। द्वारका की पटरानियां भी जब राधा रानी को दर्शन करती हैं कोई द्वेष नहीं। इस साधारण जगत में हम देखते हैं एक स्त्री का पति कृष्ण जाके द्वारका में है, पटरानियों के साथ सोते हैं, लेकिन किसका नाम लेते हैं? तो किस स्त्री को द्वेष नहीं होगा? लेकिन राधा रानी से किसी को भी द्वेष नहीं। और जो कोई भी राधा रानी का दर्शन करता है उसको तुरंत कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। दर्शन और प्रेम का उदय दोनों साथ साथ। अगर आज हमने राधा रानी के दर्शन किए तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? शट आ, क्या कहते हैं, अष्टसात्विक विकार, पूरे प्रेम के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि राधा रानी के दर्शन हो और प्रेम उत्पन्न ना हो। आप बोल सकते हैं इसका प्रमाण, ये कैसी बात कहती? इसका प्रमाण है स्वयं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जब यहां प्रकट हुए, जिस किसी ने भी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए उसके पूरे हृदय में प्रेम संचारित हो जाता। जब झारखंड के जंगल से चैतन्य महाप्रभु निकल रहे थे तो सभी हाथी, शेर, चीता, हिरण, सांप, सब के सब कैसे प्रेम में नृत्य करने लगे। मोर और सांप मिलकर नृत्य कर रहे हैं, शेर और हिरण नाच रहे हैं साथ साथ, चुंबन कर रहे हैं एक दूसरे का। क्यों? सारा द्वेष समाप्त, सबके हृदय में प्रेम। तो राधा रानी के दर्शन तुरंत प्रेम प्रदान करते हैं। कृष्ण का दर्शन कर नहीं सकते, कृष्ण के दर्शन से हमारा द्वेष समाप्त नहीं होता। तो ये अंतर है राधा रानी के दर्शन में और कृष्ण के दर्शन में। जब श्रील प्रभुपाद जी भारत में आए थे तो उस समय कलकत्ता में जहां हमारा मंदिर है एल्बर्ट रोड पे, ये पहले किराए का मकान था और इसके मालिक थे मिस्टर रॉय। और प्रभुपाद जी एक शिष्य थे जिनका नाम था अच्युतानंद स्वामी। उनको बोला गया था यहाँ पे कि आप आइए बंगाल में, बंगाली कल्चर को देखिए, संस्कृति को। तो अच्युतानंद स्वामी यहाँ पे थे, वो मिस्टर रॉय से मिलने गए। मिस्टर रॉय लैंडलॉर्ड है, तो अच्युतानंद जी जो मिस्टर रॉय बंगाली में थे तो वो सोचते थे, अपने आप को मानते थे कि मैं आप चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं महाप्रभु के तत्व को अच्छे ढंग से जानता हूं। तो जब उन्होंने देखा अच्युतानंद जी एक यंग से विदेशी व्यक्ति हैं, उन्होंने बोला सब कुछ शिक्षा देते हैं। तो उन्होंने बोला आपको मालूम है कि उनसे बोला, पहले पूछा, एक तो है रसगुल्ला और एक है दूध और चीनी, तो कौन सा ज्यादा रसीला और मीठा है? रसगुल्ला। थोड़े बोला इसी ढंग से चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण से ज्यादा मीठे और ज्यादा महान है, और चैतन्य महाप्रभु से ही राधा और कृष्ण आए हैं। अच्युतानंद ने सुना, उनको समझा रहे, छोटा बच्चा समझ के उनको समझा रहे थे कि रसगुल्ले से, रसगुल्ला जैसे दूध और चीनी से बड़ा है और मीठा है, उसी ढंग से चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण से ज्यादा महान है और मधुर है। अच्युतानंद जी बड़े समझ नहीं आया क्या बोले, प्रभुपाद जी के पास गए, बोले ऐसे ऐसे बोल रहे थे। प्रभुपाद ने बोला मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि रसगुल्ला किससे बना? दूध और चीनी से, तो पहले दूध और चीनी होंगे तब तो रसगुल्ला आएगा। ये बात भी ठीक है। हम चंदन बहुत कंफ्यूज हो गए, बोले आप प्रभात ये बताओ चैतन्य महाप्रभु महान है कि कृष्ण महान है, वो इज ग्रेटर। प्रभात उनको देखा मुस्कुराए, प्रभात बोले राधा रानी इज द ग्रेटेस्ट। उनके सामने बोले देखो दीवार के सामने एक चित्र था, उस चित्र में क्या था ध्यान नहीं है, तो उस सामने चित्र था उस समय दीवार में, उस चित्र को देखो, उस चित्र में क्या था कि राधा रानी बैठी हुई है और कृष्ण राधा रानी के चरणों को अपने सर पर लगा रहे हैं। जयदेव गोस्वामी जी का है ना, स्मरण कर खंडनम वंशी सी वंदनम दही पद पल्लव उदाहरण। जयदेव गोस्वामी जी यही दृश्य का दर्शन करके लिख रहे थे कि राधा रानी मान में है और कृष्ण उनके मान को संतुष्ट करने के लिए, मनाने के लिए उनके चरणों को अपने सर पर रख रहे हैं। तो बोले देखो कौन महान है, कृष्ण और राधा रानी। बोला देखो साथ में दूसरा चित्र भी है, तो दूसरा चित्र क्या था कि कृष्ण जो है छोटे बाल रूप में नंद महाराज की पादुकों को अपने सर पे उठा के जा रहे हैं। बोले क्या कर रहे हैं, इसमें कौन महान है, बोले नंद महाराज। इसका मतलब आर डिवोटी इज ग्रेटर देन कृष्ण एंड राधा रानी इज द ग्रेटेस्ट डिवोटी, राधा रानी इज द ग्रेटेस्ट। तो राधा रानी सबसे महान भक्त है। कृष्ण के साथ अनंत संख्या में गोपियां हैं, उन सभी गोपियों में सर्वश्रेष्ठ गोपी किसको माना जाता है, श्रीमती राधिका, क्योंकि श्रीमती राधिका कृष्ण की हर इच्छा को संतुष्ट कर सकती है। इसलिए श्रीमती राधिका को बोला गया है सर्वकांति चैतन्य चैतन्य कृष्ण जी बता रहे हैं, पूर्ण रूप से वो कृष्ण की इच्छाओं को संतुष्ट कर सकते। श्रील प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में दान के लिए कौमुदी ग्रंथ से एक घटना वर्णन करते हैं। श्रीमती राधा कहती हैं कि अगर मैंने कृष्ण का गुणगान नहीं किया या कृष्ण का गुणगान नहीं सुना तो मैं गूंगी और बहरी हो जाऊं, और अगर मैंने कृष्ण के दर्शन नहीं किए तो मैं अंधी हो जाऊं। तो इससे क्या दिखाता है, ये दिखाता है राधा रानी की विनम्रता। राधा रानी हमेशा कृष्ण का दर्शन कर रही हैं, लेकिन बोले अगर मुझे दर्शन नहीं हुए तो मैं अंधी हो जाऊं। वो हमेशा गुणगान सुनती हैं करती हैं, बोले अगर नहीं सुन करूं तो मैं गूंगी और बहरी हो जाऊं। ये कृष्ण की विनम्रता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये महान भक्तों के लक्षण है। जो महान भक्त हैं अपने शुद्ध चेतना की अवस्था में कभी अपने आप को भक्त मानते ही हैं। तो राधा रानी महान भक्त हैं लेकिन राधा रानी अपने आप को भक्त मानती ही नहीं। और दूसरी राधा रानी की क्या मानसिकता है, श्रीमती राधा रानी की यह मानसिकता है कि अगर कृष्ण मुझसे दूर हुए हैं और कृष्ण के मुझसे दूर होकर मुझे कुछ दुख दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, मुझको पीड़ा देकर अगर कृष्ण को आनंद आ रहा है तो ये पीड़ा मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद है, क्योंकि ये कृष्ण को आनंद दे रहे हैं। तो ये महान भक्तों का भाव होता है कि हम जितनी मर्जी पीड़ा सह कर लें लेकिन कृष्ण को हम सुख प्रदान कर सकें। और हम देखते हैं यही शिला प्रभुपाद जी के हृदय के भाव थे। श्रीमती राधा रानी महाभाव स्वरूपनी है, वो भगवान की अलादनी शक्ति है। अलादनी शक्ति है जो कृष्ण को आनंद दे। अलादनी शक्ति का सार बताया गया है प्रेम, और प्रेम का सार बताया गया है महाभाव, और महाभाव स्वरूपनी श्रीमती राधा ठाकुरानी। श्रीमती राधा महाभाव का स्वरूप है, कृष्ण प्रेम का स्वरूप है। तो ये महाभाव क्या है, ये है विप्रलम भाव, मालानाख्या महाभाव, विरह का भाव। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि मालानाख्या महाभाव को जिन्होंने अंगीकार किया, वो ये सिखा रहे हैं कि हमें हमेशा भक्ति की सबसे उन्नत अवस्था परिकाष्ठा है कृष्ण से विरह का अनुभव करना। कितने भक्तों को यहां पे कृष्ण से विरह होता है, पीड़ा होती है कृष्ण के विरह में, वो कृष्ण को खोजने के लिए निकलते हैं, होता है ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन ये हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रभुपाद कहते हैं सेपरेशन, सर्विस इन सेपरेशन, ये उच्चतम अवस्था है कि हम ऐसी सेवा करें कि हमें कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण होना चाहिए कि हम प्रति क्षण कृष्ण से विरह का अनुभव करें। श्रीला प्रभुपाद जी अपने गुरु के आदेशों को पूरा करने के लिए अमेरिका जाते हैं और हम जानते हैं कि आज इस वर्ष पूरे 50 वर्ष मनाए जा रहे हैं जब प्रभुपाद अमेरिका गए। 13 अगस्त 1965 में प्रभुपाद जलदूत पर चढ़े और जब जलदूत पर चढ़े हम जानते हैं कि कैसे प्रभुपाद को कितने कष्टों का सामना करना पड़ा। तो प्रभुपाद अपने जलदूत डायरी में लिखते थे, 10 सितंबर को प्रभुपाद अपनी डायरी में लिख रहे हैं, टुडे द शिप इज फ्लाइंग वेरी स्मूथली, आज ये जहाज बहुत अच्छे रंग से चल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज मैं वृंदावन से विरह का अनुभव कर रहा हूं और मुझे विरह हो रहा है गोविंद जी से, गोपीनाथ जी से, राधा दामोदर से, और मुझे एकमात्र शांति प्राप्त हो रही है कि मैं चैतन्य चरितामृत के अमृत का आस्वादन कर पा रहा हूं। मैंने भारत भूमि को छोड़ा केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की आज्ञा को पूरा करने के लिए, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मैंने ये खतरा मोल लिया केवल अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए, मैं पूर्ण रूप से उनकी कृपा पर निर्भर हूं, वृंदावन से इतना दूर। तो ये सर्विंग एंड सेपरेशन, ये प्रभुपाद हमारी जो साधना है, इस साधना में, इस साधना शुड बी ऑफ 3S, इसमें 3S होने चाहिए। कौन से 3S है? सेपरेशन, सफरिंग एंड सर्चिंग। ऊंची बातें हैं, समझने का प्रयास करो। फीलिंग सेपरेशन, साधना ऐसी होनी चाहिए कि हम भगवान से विरह का अनुभव करें, तभी तो भगवान विरह का अनुभव करें। दूसरा, उस विरह की पीड़ा का अनुभव करें। कई बार विरह करते हैं, भक्त लोग बोलते हैं जी हम मंदिर आके अच्छा नहीं लग रहा आजकल, कुछ ठीक नहीं लगता, मंदिर जाएंगे भगवान से दूर, बोला गया सेपरेशन रहना चाहिए थोड़ा सा। तो ये सेपरेशन नहीं है, अट्रैक्शन के बाद सेपरेशन का विरह, विरह का अनुभव। तो साधना ऐसी होनी चाहिए कि हम विरह का अनुभव करें और उस विरह की पीड़ा हो, ये जो पीड़ा है आनंददायक है, प्रभुपाद पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, मैं वृंदावन से इतना दूर, आज मैं वृंदावन को मिस कर रहा हूं, गोविंद देव महात्मा मदन मोहन की याद आ रही है प्रभुपाद को। अगर प्रभुपाद बॉस्टन में पहुंचते हैं तो वहां जब देखते हैं इतनी बुरी हालत, तो प्रभुपाद को और विरह होता, कहां वृंदावन और कहां बॉस्टन, उफ गंदगी। और फिर जब बॉम्बे स्ट्रीट में जाते हैं, बॉम्बे स्ट्रीट में प्रभुपाद गए, वहां पे हमेशा बियर और मूत्र की स्मेल आती रहती थी, मिक्स मिट्टी, लोग वहीं बियर पी रहे हैं, वहीं मूत्र त्याग रहे हैं, क्या है स्मेल कुछ पता नहीं, कहां वृंदावन कहां बॉम्बे स्ट्रीट। प्रभुपाद हमेशा वृंदावन का विरह अनुभव करते रहते थे, बट ही वॉज सर्विंग इन सेपरेशन। पीड़ा का भी अनुभव हो रहा है, फीलिंग सेपरेशन ऑल्सो, और फिर क्या है सर्चिंग। ऐसा नहीं है हमारे पूरी अवस्था का ये सिद्धांत ही है कि विरह है जी बस दूर रहो, सेपरेट रहो भगवान से, तभी तो सेपरेशन होगा, नहीं। उस सेपरेशन को दूर करने के लिए वो बड़े आतुर है, भगवान को ढूंढ रहे हैं, जैसे कि शर गोस्वामी, हे राधे रज देवी के चल लेते, हे नंद सुनो पुता, ढूंढ रहे हे राधे हे रज देवी के, अब कहां हो, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदे कुने पुता, कहां पे आप। तो इस ढंग से ये सर्चिंग, तो हम कैसे विरह का अनुभव कर सकते हैं, पीड़ा अनुभव कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं, कैसे करें। तो आज के दिन राधा अष्टमी के दिन हमें श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़े। भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ने के लिए चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा रानी के महाभाव में है, उन्होंने इस कृष्ण प्रेम को एक पैकेज फॉर्म में दिया है। इस कृष्ण प्रेम का जो शाब्दिक रूप है वह हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये कृष्ण प्रेम का शाब्दिक रूप है, वर्ड फॉर्म में पूरा कृष्ण प्रेम इसको हम जितना ध्यान पूर्वक जप करेंगे, जितना प्रीति पूर्वक इसका जप करेंगे, ये हमें कृष्ण से आकर्षण उत्पन्न करेगा और फिर इस सेपरेशन हम विरह का अनुभव कर पाएंगे और हम जप करते हुए कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद क्या कहते हैं, जप कैसा होना चाहिए, कैसे एक छोटा बच्चा अपने मां के लिए कन्हा रहा हो। एक भक्त बता रहे थे बंगाल में भक्त लोग जब प्रचार करने जाते हैं तो पूछते हैं, प्रश्न है राधा रानी को लेकर कि जितने भी हमने सुने हैं, हमने बोलते हैं दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, तो राधा माँ क्यों नहीं बोलते, राधा रानी क्यों बोलते हैं। मैं पूछा राधा रानी बोलते हैं, राधा माँ बोलना चाहिए ना। वास्तव में श्रीमती राधा रानी जगत माता है और प्रभुपाद कहते हैं शी इज द प्रोटेक्ट्रेस ऑफ ऑल द डिवोटीज, सबकी रक्षा करती हैं वो। तो हमें जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, हरे को ऐसे पुकारना चाहिए जैसे अपनी मां को, बच्चा मां को रो रो के पुकार रहा है। एक बारी ब्रज में श्रीमती राधिका राधा कुंड के साथ ये गांव है, वहां के घर में छोटे बच्चे बहुत शरारती थे। एक भेड़ थी वहां पे, मादा भेड़, तो सब बच्चे उसके पीछे पड़े हुए थे, उसको पत्थर मार रहे थे। तो भेड़ बेचारी अपनी रक्षा करते हुए बिल में घुस गए। बच्चों ने क्या किया, उस बिल को झाड़ फूस से ढक दिया और वहां पे आग लगा दी और चले गए। बेचारी भेड़ बिल के अंदर है और भेड़ बिल को पूरा बंद कर दिया, बाहर से आग लगा दी। और जो भेड़ थी वो कराहने लगी असहाय अवस्था में, रो रो के कढ़ा कढ़ा के किसको पुकार रही थी, राधा रानी को, राधे राधे राधे। राहत नहीं, आप लोगों को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, बैठे बैठे थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, कब प्रवचन खत्म हो गया, समाप्त नहीं हो रहा, निद्रा देवी के गोद में है, कहां जगा दी हमारे लिए, कौन बोला इतनी जोर से राधे, प्लीज थोड़ा सहन कर लीजिए और आज का दिन है कराने के लिए। एक बार हृदय के बिल्कुल अंतकरण से पुकारिए श्रीमती राधा रानी को, दर्शन पूर्ण खुल जाएंगे। राधे 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 राधे। उस भेड़ की स्थिति को समझिए, बिल बंद है, बाहर अग्नि जल रही है, यही हम सबकी स्थिति है। इस भौतिक जगत में तीन तापों से हमें चलाया जा रहा है, लेकिन हमारी अज्ञानता की इतनी ऊंचाई है, परिकाष्ठा है, हमें लगता नहीं हम दुखी हैं। प्रभुपाद कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति का एक लक्षण ये है जो इस समझ जाए कि मैं इस भौतिक संसार में दुखी हूं। हमें लगता ही नहीं हम दुखी हैं, मेरा थोड़ी सी बात, पार्ट ऑफ लाइफ है, क्यों घबराते हो, चलो आगे। नहीं, वो भेड़ ने गिव अप कर दिया, मैं नहीं बच सकती। असहाय अवस्था में इस अवस्था को याद रखें। जब हरिदास ठाकुर को काजी ने बुलाया, काजी ने काफी हिंदुओं को पकड़ के रखा हुआ था, कैद में बंद करके रखा हुआ था, तो जब हरिदास ठाकुर मालूम चला सब कैदियों को कि हरिदास ठाकुर आने वाले हैं हमारे साथ, तो बड़े आज महान संत के दर्शन हो गए, उनकी कृपा मिलेगी, सबके सब बड़े असहाय अवस्था में यूं खड़े हो गए। और हरिदास ठाकुर ने जब उनको देखा तो हरिदास ठाकुर ने बोला ऐसी अवस्था में ही रहो। वो सोचे थे कि आशीर्वाद देंगे कि बंधन मुक्त हो जाए, लेकिन हरिदास ठाकुर ने आशीर्वाद दिया इसी अवस्था में रहो। ये जो असहाय अवस्था है इसको याद रखो, ये नहीं बोला कि हमेशा बंदी रहो, मुक्त भी हो जाओ लेकिन इस असहाय अवस्था को हमेशा याद रखो। तो कराहेंगे तभी, हृदय से हम तभी पुकार सकेंगे जब अपनी असहाय अवस्था को जान पाएंगे। तो जब राधा रानी ने उनकी कराहट सुनी तो उन्होंने तुरंत अपने सखियों को बोला, निकाल दो बाहर उस भेड़ी को और तुरंत उसको मेरा नित्य पार्षद बनाओ और मेरी सेवा में लगाओ। यह है राधा रानी की करुणा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगर राधा रानी कृष्ण को रिकमेंड कर दे, दिस डिवोटी इज वेरी नाइस, कृष्ण को तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रभुपाद कहते हैं चाहे कितना ही बड़ा वो मूर्ख क्यों ना हो, तो हम तो मैं तो मूर्ख हूं, बिल्कुल असहाय अवस्था में हूं, हमारे लिए और कोई हमारा निदान का और कोई तरीका नहीं है, केवल राधा रानी की करुणा ही एकमात्र आशा की किरण है। अब उसका भी हमने आश्रय नहीं लिया तो हमारी क्या स्थिति होगी। तो अपनी असहाय अवस्था को जाने और कढ़ा करा के केवल आज का दिन नहीं है, राधा अष्टमी साल में एक बार ही आती है, अगर हम सही चेतना में रहे तो हर क्षण हमारे सामने राधा रानी की कृपा उपलब्ध है। प्रभुपाद कलकत्ता में राधा अष्टमी के दिन एक वार्तालाप कर रहे थे और प्रभुपाद ने बोला राधा अष्टमी का क्या अर्थ है, राधा अष्टमी का अर्थ है कि हम जोर जोर से राधा रानी के नाम को पुकारें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। तारे हे राधा रानी मुझे अपनी सेवा में लगा, हम लोग आज राधा रानी के चरणों के दर्शन करेंगे, ये चरणों के दर्शन इतने चीप नहीं है, आगे आगे खड़े हो जाएंगे लोग, हटेंगे नहीं, आप उस साल भर दर्शन करें, क्या हमें दर्शन क्या हमें दिखाई दे, हमें तो एक संगमर की मूर्ति कुछ दिखाई दे, बस चरणों के दर्शन का क्या महत्व है। हमें बताया कि चरणों को भगवान राधा रानी के चरणों को अपने सर पे रखते हैं, ये चरणों का दर्शन का अर्थ है कि हम राधा रानी की सेवा में जुड़े। और राधा रानी प्रकट किस लिए होती है, राधा रानी चाहती है कि मेरी करुणा का वितरण पूरे विश्व भर में हो, राधा रानी सब जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुई है, तो राधा रानी की करुणा को हमने बांटना है। कैसे बांट सकते हैं, इस हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचार के द्वारा। तो असली जो राधा रानी की दास्य में असली जो राधा रानी की सेवा है वो कृष्ण की राधा रानी की करुणा का वितरण करना है इस हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। श्रीला प्रभुपाद जी सच्चे राधा रानी के भक्त हैं। प्रभुपाद कहते हैं बचपन में जब साधु लोग घर में आते थे तो इनके पिता हर साधुओं से प्रार्थना करते थे कि मेरा बेटा राधा रानी का सच्चा भक्त बने, और प्रभुपाद सच्चे भक्त बने, राधा रानी की करुणा को पूरे विश्व में वो दे गए। तो राधा अष्टमी के दिन हम श्रीमती राधा रानी के चरणों के जब दर्शन करें उनसे यही प्रार्थना करें कि मैं आपका सच्चा दास बन सकूं, सच्चा दास अनुदास प्रभुपाद का सेवक बन सकूं और आपकी करुणा को बांटने का एक माध्यम बन सकूं। जय जय श्री राम।